ओम शांति। बहन जी ने तो बहुत अच्छा परिचय आपके सम्मुख दे दिया। वास्तव में तो जब भी मैं यहाँ पर किसी कंपनी के ग्रुप को देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो पूरे विश्व भर से ग्रुप्स आते रहते हैं, अलग अलग देशों से, अलग प्रांतों से, अलग अलग प्रोफेशंस के, लेकिन जब कोई पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर या सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट या ऐसे कोई ग्रुप्स देखता हूँ, तो मुझे अपने ONGC के दिनों का ख्याल आ जाता है। 1967 में इंजीनियरिंग पास करने के बाद, जैसे शायद परसों आपको परिचय दिया भी गया होगा, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद से मैंने जब MTech किया और ONGC ज्वाइन किया, तो नेचुरली हर ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। ONGC भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और भारत की नवरत्न कंपनियों में लीडिंग मोस्ट कंपनी है। ONGC का भी स्टाफ बहुत काफी, मोर देन 50,000 स्टाफ पूरे भारत भर में फैली हुई कंपनी थी। तो हम देखा करते थे कि मोस्टली जो प्रोग्राम्स होते हैं वो ज्यादातर स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम होते हैं। हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं तो उसमें स्किल या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, या कैसे हमारी एफिशिएंसी बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े आदि आदि, इन क्षेत्रों में ही ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्यादातर होते हैं। कुछ बिहेवियर साइंस के भी प्रोग्राम हुआ करते थे, लेकिन ऐसे प्रोग्राम कोई नहीं होते थे जो कुछ होलिस्टिक नेचर के हो, जिसमें संपूर्ण जीवन का कुछ ऐसा सार आ जाए। क्योंकि मनुष्य को हम कई बार जब वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो हम समझते हैं वो हमारा एम्प्लॉई है, ऑफिसर है, मैनेजर है, और हम उसी निगाह से ही उससे देखते हैं कि इससे हमें ये आउटपुट लेना है। ऑर्गेनाइजेशन इस नजर से उसे देखती है। हम भी अपने को समझते हैं कि मैं इस ओहदे पर काम कर रहा हूं तो मुझे ये आउटपुट देना है, इतना मैंने एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर के बीच रिलेशनशिप, उसी से ही कंसर्न हमारा जीवन रहता है। ठीक भी है, क्योंकि हमारा काफी समय ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, लेकिन फिर भी मनुष्य जो है एक प्राणी है, वो घर में है, किसी का पति है, पत्नी है, किसी का पिता है, किसी का बेटा है, तो इस कारण से जैसी वो मानसिक स्थिति लेकर ऑर्गेनाइजेशन से घर में जाता है वो घर में वैसा बिहेव करता है, और जैसी वो मेंटल स्टेज लेके अपने घर से ऑर्गेनाइजेशन में आता है, अकॉर्डिंगली उसका बिहेवियर और उसका आउटपुट वैसा होता है। इसीलिए आवश्यकता इस बात की थी कि ऐसे होलिस्टिक नेचर के प्रोग्राम्स तैयार किए जाएं जो व्यक्ति को एक संपूर्ण रीति से देख सकें, सामाजिक दृष्टिकोण से, उसके पारिवारिक दृष्टिकोण से, उसके प्रोफेशनल एंगल से आदि आदि। तो इसमें कुछ वैसा ही थोड़ा सा प्रयास किया गया है कि लाइफ, जीवन जीने की कला क्या है और किस तरीके से हम अपने जीवन को ढाल सकते हैं, क्योंकि ये हेट्रोजीनियस ग्रुप होता है मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन से जब आते हैं, ऑफिसर्स भी, वर्किंग कैडर और सब मिलके, तो इसीलिए इसको थोड़ा जनरलाइज्ड बनाने का प्रयास किया गया है। तो इससे पहले हम लोग फर्दर मूव करें हैं, व्हाट इज लाइफ एक्चुअली, जीवन क्या है। आप सबने भी पढ़ा होगा, हाँ, क्या है जीवन, जीवन की कोई भी परिभाषा आप बताइए। यस, लाइफ को कहा गया है भाई जीवन एक पथ है, इस पथ पर चलते रहना है, जीवन एक चैलेंज है, उसको फेस करना है, जीवन एक पुल है, उसे क्रॉस करना है आदि आदि। जो व्यक्ति जिस दृष्टिकोण से देखता है, जैसा अगर वो आशावादी है वो जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखता है, कोई निराशावादी है उसका वैसा दृष्टिकोण हो जाता है, लेकिन हमें चाहिए थोड़ा यथार्थवादी दृष्टिकोण, प्रैक्टिकल। तो जीवन की कई परिभाषाएं हैं। अब आप एक ब्रह्मा कुमारी, यस, लाइफ इज अ गेम प्लेट लाइक दैट, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। या मुझे याद है एक प्रोफेसर आए थे, ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम हो रहा था, तो उन्होंने जीवन की परिभाषा अपने हिसाब से दे दी। क्या दी उन्होंने? कि जिंदगी है एक सेंटेंस, जिंदगी है एक सेंटेंस, इसे खुद ही समझो, जवानी डैश बुढ़ापा कॉमा मौत को फुल स्टॉप समझो। यानी सेंटेंस के उन्होंने, प्रोफेसर थे, तो जिंदगी है एक सेंटेंस, सेंटेंस में क्या होता है, कॉमा फुल स्टॉप डैश सेमी कॉलन आदि, तो जिंदगी है एक सेंटेंस इसे खुद ही समझो, जवानी डैश बुढ़ापा कॉमा मौत को फुल स्टॉप समझो। कॉमा की तरह बुढ़ापे में कमर झुक जाती है या लाइक दैट। तो ऐसे जीवन की अलग परिभाषाएं की है। बस किसी ने कहा भाई जिंदगी तो चार दिन की है, और चार दिन इसी हिसाब से, किस हिसाब से चार दिन का कहा, अलग अलग दृष्टि, यस, चार दिन किस हिसाब से कहा है जिंदगी। इसमें जैसे लाइफ फोर वर्ड्स हैं, LIFE, तो इसमें जीवन का एक संपूर्ण दृष्टिकोण आ जाता है। और क्या दृष्टिकोण, क्योंकि जीवन की परिभाषाएं तो बहुत है, मोर देन 100 डेफिनेशंस आर देयर, लेकिन हम सीधा ही एक यथार्थ वाली दृष्टिकोण पर आते हैं। तो LI डिनोट्स लुक इंटरनली, एक जीवन का पहलू है आंतरिक पक्ष, LI लुक इंटरनली, और एक जीवन का दूसरा पहलू है बाहरी पक्ष एक्सटर्नली, FE मीन्स फॉरवर्ड एक्सटर्नली। वी ऑल वांट टू गो हायर एंड हायर ऑन द लैडर वेयर एवर वी आर वर्किंग। कोई भी क्षेत्र में हो, प्रमोशन चाहते हैं, मोर प्रेस्टेज, मोर पर्क्स, मोर पावर, मोर मनी, नथिंग रॉन्ग, जीवन में हर मनुष्य आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है कि कई बार मनुष्य को बहुत स्ट्रेस, टेंशन, वरीज, एंग्जाइटीज एंड समटाइम्स डिप्रेशन आदि भी हो जाता है, क्योंकि आजकल की जिंदगी बस बहुत कम्पिटिटिव लाइफ है, और इसीलिए कई प्रकार के स्ट्रेस आदि होते हैं। तो इस कारण से इस पहलू की तरफ तो हमारा ध्यान रहता है, राइट फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू लेट इवनिंग हम इस पहलू की तरफ ही दौड़ते रहते हैं, लेकिन बहुत कम ध्यान हमारा इस आंतरिक पक्ष की ओर जाता है, लुक इंटरनली, क्योंकि हमारा आंतरिक पक्ष भी, विल पावर, थिंकिंग पावर, हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ जितनी शक्तिशाली ताकतवर होगी, उतना हम लाइफ में एडवर्स सिचुएशन को सक्सेसफुली हैंडल कर सकेंगे। एडवर्स सिचुएशन तो आएंगी आएंगे, ऐसा तो है नहीं जीवन में हमेशा एक हो, भाई प्रकृति का नियम ही है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दुख सुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, हानि लाभ, हार जीत, ये नियम ही है सृष्टि का, और ये आएगा ही आएगा। इस कारण से हमारे अंदर इतनी इंटरनल स्ट्रेंथ हो कि हम एडवर्स सिचुएशन को, उसको भी सक्सेसफुली फेस कर सके। और इसी बात को गीता में भी कहा है, इन सब परिस्थितियों में भी जो व्यक्ति मान अपमान निंदा स्तुति में मानसिक स्थिति जिसकी स्टेबल रहती है, वो ही स्थित प्रज्ञा है। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड एक्चुअली इन टुडेज सिचुएशन इज टू हैव द स्टेबिलिटी ऑफ द माइंड एंड सो दैट वी कैन फेस एवरी सिचुएशन सक्सेसफुली इन लाइफ, उसे वो कर सके। और इस कारण से ये इंटरनल स्ट्रेंथ, ये भी होना जीवन के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। इसी के साथ साथ है ये, तो व्हाट इज दैट सिचुएशन जीवन के अंदर, ये देखिए लाइफ में जो वेरियस पहलूज जो हैं, अलग अलग, जीवन की तुलना एक मेज से की है, यू सी वेरियस डायमेंशंस ऑफ लाइफ। जैसे मेज में ना चार टांगे हैं, और मेज में स्टेबिलिटी अगर हम चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, ऑल द फोर लेग शुड बी इक्वल। अभी ये मेज है, चार टांग है, एक टांग अगर छोटी या बड़ी होगी तो मेज हिलती रहेगी। तो ऐसे ही हमारा जीवन भी ना अक्सर करके वो हिलता रहता है। कई बार तनाव, कई बार नींद नहीं आएगी, कई बार ये बीमारी, कई बार कोई ऐसी न्यूज सुनी भाई कोई नियर एंड डियर का एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गया, एकदम बहुत ही हलचल में आ जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगा, नींद नहीं, मतलब सिचुएशंस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता और उससे वो हमारे हेल्थ पर, मेंटल हेल्थ, फिजिकल, सोशल हेल्थ सब पे प्रभाव डालते हैं। तो ये चार टांगे जो जीवन की है ना, इन चारों पर हमारा अगर बराबर नियंत्रण रहे, एक पहला है फिजिकल हेल्थ, हम सब जानते हैं और इसके बारे में बचपन से, इसलिए इस पर हम विशेष वो डिस्कशन नहीं करेंगे, शायद आपका सेपरेट सेशन भी हेल्थ पर होगा कि भाई अगर बीमार होते हैं तो ये दवाई लेनी चाहिए, ये परहेज करनी चाहिए आदि आदि, तो हेयर इन दिस सेशन वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस, वी ऑल नो अबाउट फिजिकल। दूसरी है एक मेंटल हेल्थ, ये किसका फोटो यहां बनाया हुआ है, आइंस्टीन का, मेंटली उसको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, मेंटल उसका आईक्यू लेवल बहुत काफी हाई है। कुछ दिन पहले, चार छह महीने पहले आपने अखबार में भी शायद पढ़ा होगा, इसका आईक्यू लेवल करीब समथिंग लाइक मोर देन 160 उनका कोई पैरामीटर होता है था। तो बहुत अरसे बाद एक इंडियन गर्ल, लड़की साउथ से थी और वहां पर अमरीका में वहां रहते हैं, उसका 162 आईक्यू लेवल आया, तो बहुत बड़ी न्यूज बन गई, वर्ल्ड ओवर में गई। तो यानी कि दिस इज कंसिडर्ड कि मैक्सिमम मेंटल स्टेबिलिटी का प्रतीक और उसका वो, तो ये सब उसका वो बताया गया है थोड़ा सा। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड लाइफ में, कि फिजिकल हेल्थ की तरफ हम ध्यान देते हैं, ऐसे ही मन की हेल्थ की तरफ। हम अक्सर कह देते हैं क्या करें भाई, मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है, हम चाहते तो हैं मन को। तो वी विल डिस्कस समथिंग मोर अबाउट दिस मेंटल हेल्थ, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी में अब फिजिकल हेल्थ के बारे में तो भाई मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, मन को कैसे हम वश में करें, नियंत्रण में करें, क्योंकि मन के ऊपर सारा, तो थोड़ा सा हम इस पर भी आज डिस्कस करेंगे। तीसरी हेल्थ है सोशल हेल्थ या प्रोफेशनल। हम सब जानते हैं कि भाई परिवार में या समाज में हम रहते हैं, कैसे माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ, वाइफ हस्बैंड के रिलेशनशिप, कैसे पड़ोसियों के साथ व्यवहार होना चाहिए आदि, और सिमिलरली प्रोफेशनल हेल्थ, प्रोफेशन आप सभी भी प्रोफेशन में हैं, इफको से आए, तो प्रोफेशनल, तो कैसे हमारा प्रोफेशनल में स्किल अपग्रेडेशन और ये सब चीजें होती हैं, उनके साथ साथ हमारा मेंटल अपग्रेडेशन भी हो। प्रोफेशनल तो होता है लेकिन हमारा मेंटल अपग्रेडेशन एंड साथ साथ, तो ये देखिए तीन टांग आपको दिख रही है ना, तो इन तीन टांगों की तरफ तो हमारा ध्यान रहता है लाइफ में, लेकिन चौथी टांग कौन सी है, दैट इज स्पिरिचुअल हेल्थ, उसकी तरफ हमारा ध्यान कम रहता है। हम सोचते हैं जब हम रिटायर हो जाएंगे, जब हमारा बच्चे सेटल हो जाएंगे, तब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ कुछ ध्यान देंगे, तो वो टांग हमारी जीवन में थोड़ी छोटी रह जाती है, उसको हम पोस्टपोन करते रहते हैं, टाइम नहीं है अभी, वी आर वेरी बिजी, लेकिन उसके लिए टाइम की आवश्यकता उतनी ज्यादा नहीं है जितना थोड़ी अपने मेंटल लेवल की आवश्यकता। तो इसीलिए स्पिरिचुअल, इसलिए देखने में आपको आ रहा है वो टांग दिखने में थोड़ी छोटी दिखती है लेकिन एक्चुअली छोटी होती नहीं है, किसी भी एंगल से देखेंगे आपको तीन टांग पूरी दिखेंगी, चौथी देखने में छोटी आएगी लेकिन एक्चुअली छोटी नहीं होगी, एक्चुअली छोटी होगी तो हिलती रहेगी, लेकिन ऐसे ये है हम उसे लीस्ट इम्पोर्टेंस लाइफ में दे देते हैं, क्योंकि क्यों, उसकी वजह यह हम समझते हैं स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन दे आर सेम, बट एक्चुअली दे आर एंटायरली डिफरेंट। रिलीजियस लाइफ जो है वो तो जहां हम पैदा हो गए, हिंदू फैमिली में पैदा हो गए, हिंदू हो गए, या मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, जैनी, जैसा रिलीजन, तो रिलीजन्स आर डिफरेंट। रिलीजन से मतलब नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स समथिंग वैल्यू ओरिएंटेड लाइफ, जीवन में मूल्य, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना, आदर की, और अंडरस्टैंडिंग की भावना, ये सब जीवन के मूल्य हैं। और ये जीवन के मूल्य जितने हम अपने जीवन में अपनाते जाते हैं, उतना हमारा ये स्पिरिचुअल लाइफ भी वो हो जाती है, स्ट्रेंथन। तो जीवन के ये चार पक्ष जो है ना, ये चारों पक्षों की तरफ अगर हमारा ध्यान, तो जीवन रूपी मेज हमारी बड़ी स्टेबल रहेगी। तो जीवन जीने की ये दूसरी कला, एक एक कला को हम देखते चले। टॉपिक ये है ना, लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स जीवन। तो पहली कला कौन सी थी, फर्स्ट स्लाइड की, दो मेजर पहलू जो है, एक LI इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, FE फॉरवर्ड एक्सटर्नली एक्सटर्नल, जीवन का आंतरिक पक्ष और बाहरी पक्ष, उन दोनों का बैलेंस, नंबर वन। नंबर टू, इसको फर्दर एलोबरेट करें तो जीवन के ये जो चार पक्ष हैं, एक है भौतिक, मानसिक, सामाजिक या प्रोफेशनल, और चौथा आध्यात्मिक। ये जीवन के चारों पक्ष, इनका पूरा ज्ञान और इनके बैलेंस। तो ये अगर बैलेंस जितना रहता है, तो उतना जीवन जीने की कला हमारी और स्ट्रांग होती जाती है। तो इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हम जीवन के इन चारों फोर डायमेंशंस को अच्छी तरह समझें। फर्दर आप इसमें और जब देखते चलेंगे, क्योंकि अक्सर करके क्या होता है, जीवन के इन चारों पक्षों में हमने एक बात को समझने का प्रयास किया है कि हम समझते हैं अक्सर करके ना, मन, बुद्धि और ब्रेन, ये सब चीज एक है, एक ही है। लेकिन इन सब में फर्क है। क्या फर्क है उसको मोटे तौर पर अगर समझ लें तो आगे की बात और बहुत क्लियर हो जाएगी। जैसे पहले पिक्चर में देखा, जीवन के दो पक्ष हैं, एक बाहरी एक आंतरिक। बाहरी माने बॉडी का पक्ष। तो शरीर के वैसे तो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ पार्ट्स आर देयर, बट टू मेजर एस्पेक्ट्स जो शरीर के हैं वो है एक हार्ट और एक है ब्रेन। ये दो पर शरीर पूरा हमारा अधिकतर आधारित रहता है, ब्रेन और हार्ट। तो ये जैसे जीवन के ये फिजिकल पार्ट है, ब्रेन और हार्ट को डॉक्टरों ने देखा है, समझा है, हम सब जानते हैं, ECG निकालते हैं, हार्ट में प्रॉब्लम हो, ब्रेन में हो, EEG हार्ट के सब चीजों से, इसलिए इसकी डिटेल में मैं नहीं जाता। लेकिन साथ ही साथ जो जीवन का एक दूसरा पक्ष है वो है सटल कॉन्शियसनेस। एक है ये बॉडी, एक है कॉन्शियसनेस जिसे हम आध्यात्मिक भाषा में, चालू भाषा में आत्मा या कॉन्शियसनेस या चेतना या जीवन, जिंदगी वो बोल देते हैं। तो इसके जो दो मेजर एस्पेक्ट हैं, वो मेजर एस्पेक्ट है, एक है माइंड और एक है इंटेलेक्ट। तो देखिए अक्सर करके हम क्या है कि माइंड, मन, बुद्धि और ब्रेन, इन तीनों को एक समझ लेते हैं। हार्ट तो चलो हम समझते हैं ये अलग है, लेकिन ये सब चूंकि यहां से कनेक्टेड है हेड से, तो हम क्या क्या करें, मेरा मन ऐसा, क्या करें मेरी बुद्धि ये इधर नहीं चलती, क्या करें मेरा ब्रेन ऐसा है। हम तीनों को एक समझ, लेकिन तीनों अलग अलग हैं। क्या अलग अलग हैं वो आप समझने का प्रयास कीजिए। ये जैसे ब्रेन बताया, ब्रेन और हार्ट ये शरीर के हिस्से हैं। ब्रेन, हार्ट इज ए पंपिंग स्टेशन, पूरे शरीर में पंप करता है, ये होता है। जैसे हार्ट में जब आर्टरी में क्लॉटिंग हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, एंजाइना पेन हो जाता है, वो तो क्लॉटिंग, ब्लड जब क्लॉट हो जाता है कहीं पर भी ना, क्लोरेस्ट्रॉल हाई हो गया, कुछ भी क्लॉटिंग, उस सबसे तो हम परिचित हैं, उनका एंजियोग्राफी करा लेंगे, एंजियोप्लास्टी, बाईपास, ठीक है हार्ट। लेकिन जब माइंड में क्लॉटिंग हो जाती है, कोई विचार बार बार परेशान करता है, हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, उसकी विधि हम नहीं जानते, माइंड में जब कोई विचार की, कोई पुरानी बात याद आ रही है, नींद नहीं आ रही है, किसी से कोई ईर्ष्या है, दुश्मनी है, घृणा किसी से, हमारी लाइकिंग और डिसलाइकिंग पर माइंड क्लॉटिंग हो जाती है, थॉट की क्लॉट हो जाती है, थॉट फंस जाता है, वो हमें बहुत परेशान करता है। और उसी की वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, नींद नहीं आएगी, बहुत स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। जैसे पुराने जमाने में रिकॉर्ड होता था ना, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, आजकल तो वही सीडी और इससे पहले कैसेट वगैरह। लेकिन ग्रामोफोन रिकॉर्ड होता था तो क्या होता था ना? कभी पुराना हो जाता था और रिकॉर्ड सुई एक जगह फंस जाती थी। इस मास्टर वाइज टाइप के रिकॉर्ड होते थे ना, जिन्होंने वो देखे हैं वो हाथ खड़ा करे। यहाँ तो सब काफी ओल्ड टाइमर बैठे हैं, देखे होंगे। तो सुई फंस जाती थी और रिकॉर्ड में तो क्या होता था, वही चीज बार 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 बार। और कोई गीत बड़ा अच्छा है, मानो लता मंगेशकर का है या मोहम्मद रफी का है, हमारी बड़ी लाइकिंग का है, जब नॉर्मल केस में हम सुनते हैं बड़ा आनंद आता है। लेकिन अगर पुराना हो गया और वहीं फंस जाएगा तो हमारी लाइकिंग रहेगी और कुछ चिड़चिड़ापन सा, खींच सा, या उसमें वो चीज पैदा हो। तो ये जैसे क्लॉटिंग, थॉट क्लॉटिंग, पुरानी चीजों की जब क्लॉटिंग, तो जीवन जीने की कला में ये एक बहुत बड़ा विघन है। जैसे शरीर की हेल्थ में ये हार्ट की क्लॉटिंग हो गया, ब्रेन का ये ईईजी निकाला, उसके अंदर फर्क आ जाता है ये सब। इसी तरीके से कॉन्शियसनेस में जब ये माइंड, तो ये मन की विचारों की क्लॉटिंग हो जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। और जीवन जीने की कला की बजाय ये दुख का एक कारण बन जाता है। इसी तरह मन और बुद्धि, बुद्धि क्या है, वो निर्णय। आपने शिविर तो करा होगा ना 3 दिन से, तो आपको शिविर में पहले दिन क्या बताया गया, आत्मा किन चीजों की बनी है, मन बुद्धि सब। मन का क्या काम है, संकल्प शक्ति, विचार। बुद्धि का डिसीजन मेकिंग, निर्णय शक्ति। और फिर कर्म तो इनसे सबसे करते ही हैं। तो इस तरीके से तो माइंड जो है ना, माइंड इज लाइक ए प्रोग्रामर। इसे तो ये देखिए, ये और क्या समझ सकते हैं, जैसे एक प्रोग्रामर होता है तो वो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करता है एंड अकॉर्डिंगली कंप्यूटर वर्क्स। तो ऐसे ही मन जो है ना, वो एक प्रोग्रामर है। आत्मा की 3 शक्तियां हैं, जैसे कंप्यूटर के वेरियस ऑर्गन्स है, कोई मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, सॉफ्टवेयर है, सारी चीज अलग अलग हैं। ऐसे ही आत्मा के भी ये जो 3 वेरियस ऑर्गन्स है, मन, बुद्धि और संस्कार, सुना होगा। तो मन जो है प्रोग्रामर है। तो ऊपर आप देख रहे हैं, जैसे ये प्रोग्रामर जो है कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग करता है, ऐसे ही मन जो है आत्मा को प्रोग्राम करता है। फिर जब प्रोग्रामिंग हो जाती है कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर, ऐसी बुद्धि जो है वो कंप्यूटर का काम करती है। मन ने प्रोग्रामिंग कर दिया, फिर बुद्धि जो है उसको हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, टेक द डिसीजन। जैसे आज आप यहां बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हैं, 2-3 महीना 4 महीना पहले कभी इन्फॉर्मेशन आपके ऑफिस से आई होगी कि भाई ब्रह्मा कुमारीज का माउंट आबू में प्रोग्राम है, आपका नाम उसके लिए ट्रेनिंग में नॉमिनेट किया जाता है या करो, आपका किया गया। तो पहले मन में संकल्प आया, इन्फॉर्मेशन आई, फिर बुद्धि ने निर्णय दिया, आपका नॉमिनेशन हुआ, या फिर आपने टिकट रिजर्व कराई या आपकी टिकट रिजर्व वगैरह कराई गई, बुद्धि ने निर्णय दिया हाँ जाना है। हो सकता है कोई ना आ सका हो अपनी किसी पर्सनल डिफिकल्टी के कारण, उसने निर्णय लिया नहीं आया ना, नहीं जा सकता, वो नहीं आया, आप लोगों ने निर्णय लिया हाँ जाना है, आप आ गए। तो मन ने प्रोग्रामिंग की, बुद्धि ने ये जैसे निर्णय लिया। और उसके बाद क्या है, थर्ड थिंग इज, जैसे शरीर जो है, ये शरीर हमारा रोबोट की तरह है, तो शरीर रोबोट से फिर हम काम लेते हैं। देखने में तो रोबोट ही आता है साइंटिफिक लैंग्वेज में कि रोबोट काम कर रहा है, लेकिन उसके पीछे प्रोग्रामर की प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर का सारा मेमोरी एंड ऑल ऑर्गन्स ऑफ द कंप्यूटर, वो सब है देखने में। ऐसे ही जब हम कर्म करते हैं तो देखने में तो ये शरीर आता है, हाँ भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर जो मैकेनिज्म पूरा है कि मन ने सोचा, बुद्धि ने निर्णय दिया, और प्रैक्टिकली देखने में ये आता है। तो ये शरीर जो है हमारा ये रोबोट की तरह है, बॉडी। तो ये क्लैरिटी अगर हो जाती है ना कि सारी की सारी चीज मन के ऊपर, तो जीवन जीने की कला में मन का बहुत बड़ा स्थान है। हमें देखने में तो ये बॉडी आएगी लेकिन मन में क्या चल रहा है, इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में ना मन को बहुत बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। और इसीलिए मन को क्या कहा गया है, ह्यूमन माइंड इज लाइक ए पैराशूट, पैराशूट वर्क्स ओनली व्हेन इट इज ओपन। प्लेन से कोई कूदा, पैराशूट जब खुला होता है तो ही कंट्रोल्ड लैंडिंग होती है, और पैराशूट अगर खुला ही नहीं, बंद हुआ तो क्या होगा, अनकंट्रोल्ड रहेगा और नुकसान होगा। तो माइंड को हमेशा हम खुला रखें, ओपन रखें, किसी पर्टिकुलर विचारधारा में न बांध लें, नहीं जो मैं सोच रहा हूं वो सही है, मेरा किसी के बारे में कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग है, वो मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग है लेकिन एक्चुअली वो मनुष्य वैसा नहीं है। जिसको मैं डिसलाइक कर रहा हूं, हो सकता है 50 लोग उसे दूसरे लाइक करते हो, जिसको मैं लाइक करता हूं दूसरों की वो डिसलाइकिंग में हो, तो ये मेरा अपना परसेप्शन है। इसीलिए माइंड को हम हमेशा खुला रखें। मैं इस धर्म का हूं, ये धर्म की बात, इस जाति का हूं, इस देश का हूं, ठीक है वो पर्टिकुलर है, लेकिन हमने अगर अपने को उसमें बांध लिया कि मैं यही हूं, तो दूसरे सारे विचारधाराएं मेरे अंदर कुंठित हो जाएंगी, उनके आने का रास्ता ही नहीं रहेगा, कुएं के मेंढक की तरह। इसीलिए कीप द माइंड ऑलवेज ओपन, सबका सुनो, फिर निर्णय अपने आप लो, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, लेकिन सुनो सबकी। उससे क्या, इसीलिए कहा जाता है देखो भगवान ने ना मनुष्य भी बनाया है ना, तो देखो अगर हम नहीं देखना चाहते आंख बंद कर ले, नहीं देखेंगे, अगर हम नहीं बोलना चाहते मुंह बंद कर ले, नहीं आवाज निकलेगी, लेकिन अगर हम नहीं सुनना चाहते तो देखो भगवान ने कोई प्रोविजन नहीं दिया है, कोई इधर फ्लैप वगैरह दिया है आंख की तरह, आंख बंद कर ली, मुंह बंद कर लिया, लिप्स नहीं, गॉड वांट्स अस दैट यू मस्ट लिसन एवरीथिंग, सुनो उसके बाद निर्णय करो। इसलिए कान खुले रखने, खुले ही होने का ईश्वर ने भी प्रोविजन दिया होगा, इसीलिए कान खुला रहेगा तो सुनेंगे, तो माइंड, ह्यूमन माइंड इज लाइक ए पैर। तो ये जीवन जीने की अगली कड़ी है, कीप योर माइंड ऑलवेज ओपन। उससे क्या होगा, जीवन के हमेशा सारे रास्ते आपके लिए खुले रहेंगे, और जितना जितना माइंड ओपन रहेगा ना उतना मन, इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में मन के ही लिए सब कुछ कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत, मन चंगा तो कठौती में गंगा। गीता में भी इसलिए कहा है मन मना भव, तन मना भव या धन मना भव या संबंध मना भव नहीं, मन मना भव, मन को मेरे में। तो जिसको मन को जीतने की कला आ गई, मन पर नियंत्रण करने की, उसके सब कुछ हो गया। शरीर के किसी पार्ट पर नियंत्रण नहीं होता है ना, तो वो पार्ट अपने आप काम करता है, तो इट इज अ डिजीज। जैसे कई बार हो जाता है ना, कौन सी बीमारी है, पार्किंसन, या वैसे भी आप देखो कई बार हम चाहते हैं चलना, यहां घुटने में दर्द हो गया, हम ठीक से चल नहीं पाते, कई बार कितनी सारे चीजें कि बॉडी के ऑर्गन एज पर माय विश काम नहीं करते, फ्रोजन शोल्डर हो गया, हम चाहते हाथ उठाना नहीं उठता है, कई चीजें होती हैं। तो वो एक जैसे शरीर की बीमारी है, ऐसे ये एक बहुत बड़ी मन की बीमारी है। हम चाहते हैं सोना, नींद नहीं आ रही है, यानी मन मेरे वश में नहीं, भी मन की बीमारी। हम चाहते हैं किसी को देख के ना, भाई हम सबके लिए, आपने सुना होगा शिविर में, भाई आत्मा में 7 गुण हैं। कौन से गुण सुने आपने, 7 गुण पहले दिन बताए होंगे ना, कौन कौन से, रिपीट करिए, हैं? वेरी गुड, सुख शांति आनंद पवित्रता प्रेम ज्ञान और शक्ति, ये गुण हैं आत्मा, ओरिजिनल गुण है। लेकिन आप अपने अंदर देखिए शांति, क्या मैं हमेशा शांत रहता हूँ? मन खुद ही जवाब देगा नहीं, अशांति है। प्रेम सबके लिए, क्या प्रेम की भावना है? नहीं। इसके लिए अगर प्रेम है, इसके लिए घृणा है, इसके लिए ईर्ष्या है, इसके लिए वह सुख में रहता हूँ, नहीं, दुख की भी फीलिंग आ जाती है। मतलब एक्चुअल लाइफ में इसका उल्टा ही है। कहने के लिए ये आत्मा की ओरिजिनल शक्ति है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में मेजोरिटी इसका उल्टा है। दोनों है, मिक्स है कभी वो, लेकिन देखा जाए इसका उल्टा। तो इसीलिए क्यों? क्योंकि मन हमारे, तो इसलिए मन को नियंत्रण में करना ये एक बहुत बड़ी कला है। और इसको हम जितना जितना वो करते रहेंगे ना, उतना उतना जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। तो मन, आज हम इस मन के पहलू के ऊपर भी थोड़ा और अधिक जीवन जीने की कला में, बाकी तो हम प्रोफेशन कैसे है उसकी कला जान जाते हैं, बॉस के साथ कैसे रहना है, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, सबके, लेकिन अपने ही मन के साथ, अपनी ही बुद्धि के साथ, अपने ही संस्कारों के साथ, हाउ टू लिव विद इट, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसी के लिए तो हम अभी चल रहे हैं आगे। चार कला तो आपको बता दी, कौन कौन सी? वंस अगेन वी रिपीट जस्ट इन फ्यू सेकेंड, जीवन के दोनों पहलू, भौतिक पहलू और आंतरिक पहलू, उसकी तरफ ध्यान दें। दूसरा, जो चार टांगे, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल पहलू, उसकी तरफ भी हमारा वो रहे ध्यान। कैसे रहे? यहाँ पर आपको जो राजयोग शिविर सिखाया जा रहा है, दैट इज स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। थोड़ा सा जाके 10-15 मिनट वहां पर अपने घरों में और निकाल। तीसरा, कीप योर माइंड ऑलवेज ओपन, इसको बस किसी चीज से कुंठित नहीं कर लीजिए। एंड दिस ऑल डिपेंड्स ऑन अवर एटीट्यूड, हमारा जीवन में दृष्टिकोण कैसा है। मन भी हमारा उसी तरह काम करता है जैसा हमारा दृष्टिकोण होता है। मानो किसी व्यक्ति की तरफ हमारा दृष्टिकोण बहुत अच्छा है, बस मन भी उसे देखेगा, हाँ हेलो हाउ आर यू, प्रेम से गले मिलेंगे, खुश, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण उसके प्रति पॉजिटिव है। एंड वाइस वर्सा, इसके विपरीत, यदि किसी से दुश्मनी है या कोई अच्छे हमारे रिलेशनशिप में नहीं है, तो मन भी वैसे ही सोचेगा, वही पुरानी घटना याद करेगा कि इसने मेरे साथ ये खराब किया था, इसने मुझे ये नुकसान पहुंचाया, ये है। तो लाइफ में हर चीज हमारे एटीट्यूड, दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। और वो दृष्टिकोण क्या चीज है, किससे उदाहरण देते हैं? बड़ा सिंपल, बचपन में आपने देखा होगा, शुरू से सुनते आ रहे होंगे, ये क्या चीज है? हाँ, हाफ ग्लास फुल, हाफ एम्प्टी, सिंपल है। अगर हम फुल ग्लास है, हाफ एम्प्टी को देखेंगे, निगेटिव एटीट्यूड, क्या करें, मैं आपके घर आया, आपने मुझे पानी दिया, मैंने पानी पिया, शीतलता का अनुभव, लेकिन मैंने देखा, अरे आधा ही पानी दिया इन्होंने, अगर पूरा देते तो मेरी प्यास बुझ जाती पूरी। तो मैंने अगर आधा हिस्सा देखा, निगेटिव, लेकिन अगर मैंने हाफ फुल हिस्सा देखा कि अरे पानी जीवन में, मतलब भरा हुआ, मेरे पास जीवन में क्या है, अगर मैं उसकी तरफ ध्यान दूंगा तो जीवन में इस तरीके से खुश रहूंगा। और अगर मैंने यही देखा क्या नहीं है, मेरे पड़ोसी पे तो भाई मारुति कार आ गई, मेरे पास तो स्कूटर ही है, मेरे पड़ोसी का तो बंगला बन गया, मेरा तो एक फ्लैट ही है 2-3 रूम का, लाइक दैट, क्या नहीं है, मैंने उस पर ही अगर कंसंट्रेट करता रहा तो ये जीवन में मुझे दुख अशांति देता रहेगा। हाँ, इस कम्पिटिटिव लाइफ में आगे तो बढ़ना ही है, एक दूसरे को देखना है, लेकिन अगर हम यही सोचते रहेंगे ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, वो मुझे रातों की नींद हराम कर देगा, स्ट्रेस में लाएगा, ब्लड प्रेशर हाई कर देगा, ये सब चीज हो जाएगा। लेकिन एटीट्यूड, इससे भी ऊपर तीसरा कौन सा है, हाफ निगेटिव एंड पॉजिटिव एटीट्यूड और रियलिस्टिक एटीट्यूड। ना तो इतने ज्यादा भी वो हम हो, रियलिस्टिक एटीट्यूड इज इवन द बेस्ट, बेटर देन दिस। पॉजिटिव एटीट्यूड हो, लेकिन ये जो देख रहे हैं ना, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो क्या है, अब आजकल इलेक्शन के दिन है, बहुत दिनों से नरेंद्र मोदी की स्पीच चल रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही शायद उन्होंने कहा था, या मुझे याद नहीं किस यूनिवर्सिटी में, स्टूडेंट्स वगैरह के सामने। तीसरा एटीट्यूड और बताया था, इसमें क्या बताया था, याद है आपको, न्यूज तो सब पढ़ते हैं, ये खाली नहीं है, क्या है इसमें, हवा है, समझे। नीचे अगर पानी है, ऊपर वो खाली देखेंगे नेगेटिव, लेकिन अगर हम देखेंगे नहीं ये हवा से भरा है। कोई भी चीज खाली तो होती नहीं, एक एम्प्टी ग्लास भी है तो भी उसमें हवा भरी हुई है। तो जीवन के अंदर है तो सही, हम देख नहीं पाते उस चीज को, रियलाइज कर सकते हैं, इसीलिए वो दैट इज रियलिस्टिक एटीट्यूड, हवा से भरा हुआ है। तो जीवन के अंदर भी ना हमारा एटीट्यूड, इसीलिए ये जो है इसको हमेशा इस तरीके से ही अपने को देखना चाहिए, एटीट्यूड हमारा किस तरीके से क्या हो टू प्लस। तो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा ना, जीवन में प्रसन्नता रहेगी। तो एक ये बहुत मोटी सी बात है, लेकिन अब जैसे फॉर एग्जाम्पल है, इसमें मुझे याद आ रही है एक प्रोफेसर साहब की बात, आपने भी शायद सुनी होगी। प्रोफेसर साहब ऐसे एक लेक्चर कर रहे थे स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेज में, और वो बता रहे थे भाई शराब पीने से क्या नुकसान होते हैं। तो सारा सुना के भाई ये अंग खराब हो जाता है, ये कैंसर हो जाता है, ये हो जाता है, सारा उन्होंने बता के फिर कहा प्रैक्टिकल। उन्होंने एक गिलास में पानी लिया, एक में अल्कोहल लिया, पानी लिया एक गिलास में, कांच का गिलास था, स्टूडेंट्स को दिखाया और देखा पानी है, एक छोटा सा कीड़ा इंसेक्ट चल रहा था उसे पकड़ा, उन्होंने पानी में डाल दिया। स्टूडेंट्स ने सबने देखा, पानी में वो घूमता रहा, तैरता रहा, चलता रहा, थोड़ी देर बाद निकाला कीड़े को, इट वॉज हेल एंड हेल्दी, बहुत जैसा था वैसा तंदुरुस्त रहा। फिर उसके बाद प्रोफेसर साहब ने दूसरा गिलास लिया जिसमें अल्कोहल था, और उसके अंदर फिर उसी कीड़े को डाला, कीड़ा अंदर गया तो थोड़ा झूमने लगा, नथिंग न्यू, बड़े बड़े लोग पी के झूम जाते हैं, वो तो कीड़ा ही था छोटा, दो चार बूंद चली गई होगी उसके पेट में, लेकिन झूमने के बाद थोड़ी देर के बाद वो शांत हो गया, मर गया। तो प्रोफेसर साहब ने उसको काफी हिलाया, देखा कोई लाइफ नहीं थी। तो प्रोफेसर साहब ने कहा व्हाट इज द मैसेज इट इज कन्वेइंग, बड़ा सिंपल है ये, क्या मैसेज कन्वे कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ने, सब बैठे थे, एक ने हाथ खड़ा किया, हाँ हाँ बताओ क्या, सब सर इट इज कन्वेइंग द मैसेज, इससे ये मैसेज मिलता है कि यदि हम अल्कोहल कंज्यूम करेंगे तो हमारे क्या पेट के सब कीड़े मर जाएंगे और हम हेल्दी रहेंगे। ये मैसेज, ये सोचने का ढंग, एटीट्यूड, तो अपना कैसा ढर्रा है सोचने का उस पर। तो ये जीवन जीने की कला का ये एक पांचवा छठा सिद्धांत है कि जीवन में जहां तक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, और इससे भी एक बड़ी क्या चीज है जो आपको बताई, रियलिस्टिक एटीट्यूड, एक नेगेटिव पॉजिटिव एंड रियलिस्टिक एटीट्यूड जो आपको बताई गई। तो इसीलिए दृष्टिकोण हमारा अगर वैसा रहेगा ना तो जीवन में आगे। तो ये जीवन के जीने की कलाएं, ये आप नोट करके, ये छठी हो गई, ये सातवीं, इस तरीके से। और इसमें क्या है, जैसा मैं आपको बता रहा था ना, ये कहना तो बड़ा इजी है कि लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, लेकिन कैसे रखो। एडवर्स सिचुएशन दिख रही है मुझे, मुझे वो व्यक्ति दिख रहा है जिसने सदा मेरे साथ खराब किया है, सदा मेरी टांग खींची है नीचे गिराने की, तो कैसे उसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखा जाए। इसके तीन एस्पेक्ट हैं, एक है क्वांटिटी ऑफ थॉट्स, विचार, आपको शिविर में बताया भी गया होगा शायद ना, मन बुद्धि संस्कार का जब पहले दिन का आप बता रहे थे तो शायद ये भी बताया गया होगा, विचार, हाँ कितने विचार आते हैं जीवन में, बहुत बहुत सारे अनगिनत विचार आते हैं, क्वांटिटी ऑफ थॉट, बट ऑन एन एवरेज इजी याद रखने के लिए कितने विचार, हर दो सेकंड में एक विचार, बस याद रखेंगे तो ऑन एन एवरेज एक मिनट में कितने विचार हो गए, रफली 30-35 लाइक दैट। तो क्वांटिटी ऑफ थॉट्स एक ये चीज है भाई, ये कैसे हो? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट बट क्वांटिटी ऑफ थॉट इज दिस क्वांटिटी ऑफ थॉट ये इतने हैं अक्सर करके क्या नॉर्मल केस में उतने विचार चलते बट वेन एवर देयर इज सम चैलेंजिंग सिचुएशन इन लाइफ द क्वांटिटी ऑफ थॉट इंक्रीजेस। जो एक दिन में करीब 25-30 हजार विचार आते हैं क्वांटिटी ऑफ थॉट 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 विचार तक हो जाते हैं देन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। उससे भी ज्यादा अगर होते हैं डिप्रेशन की स्टेज में आदमी चला जाता है। तो क्वांटिटी ऑफ थॉट वी हैव टू चेक दैट इट रिमेन्स विद इन द परमिसिबल लिमिट्स, उसके अंदर कितना रहता है, दैट इज अबाउट द क्वांटिटी। एंड हाउ टू कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ थॉट, सेकेंड थिंग इज क्वालिटी ऑफ थॉट। यूजुअली क्वालिटी ऑफ थॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ थॉट्स। क्वांटिटी ऑफ थॉट जितनी हाई होगी क्वालिटी ऑफ थॉट उतनी कम हो जाएगी होगी एंड वाइस वर्सा। तो अगर हम क्वांटिटी ऑफ थॉट ज्यादा है उसको कम करना चाहते हैं तो क्वालिटी ऑफ थॉट क्या होनी चाहिए, इट हैज टू बी एनहेंस इंक्रीज। उसी का नाम मेडिटेशन है, बस और कुछ नहीं। हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट को पॉजिटिव करना, ऐसा एनहेंस करना कि हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट हमारे कंट्रोल में रहे, तो वो क्वांटिटी अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। मुझे याद है जब मैं ONGC में था तो यहां आते ही रहते थे, हमारे यहां से हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो एक बार यहां आए, जैसे आप आए तो ऐसे एक हमने शिविर रखा था E6 एंड हाई। उसमें एक्चुअली E6 एंड हाई मीन्स GM, ED एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से लेकर अप टू चेयरमैन तक, चेयरमैन ऑल्सो केम, ऐसा करीब 35-40 का एक ग्रुप था ONGC का। यहां पर आके जैसे आप शिविर एंजॉय कर रहे हैं ऐसे शिविर देवर एंजॉयिंग। हाँ, एक हमारे जो थे ईडी उनका एक दिन दो दिन ठीक रहा, तीसरे दिन उनका तबीयत थोड़ा बिगड़ने लगा, तो उनसे पूछा भाई क्या है, नापा तो BP उनका काफी हाई था, BP वगैरह यहाँ टेबलेट लेने में थोड़ी इरेगुलरिटी हो गई, हाई हो गई। हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल है वहां ले गए उन्हें, जस्ट वैसे उन्होंने देखा तो वहां हमारे जो फिजिशियन थे उन्होंने कहा ठीक है आप बैठिए जब तक मैं दूसरे पेशेंट को देखता हूँ, आप तब तक यहाँ रेस्ट लेके बस एक मेंटल एक्सरसाइज कीजिए तब तक कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, मैं न्यारी हूं, ये शरीर है और जैसे ये कपड़ा है आपको मालूम है मैंने ये पैंट शर्ट पहनी हुई है और मैं इस शरीर से अलग हूं, तो जो भी कपड़ा पहना होता है उसे मालूम है दिस इज माय क्लोथ आई एम डिफरेंट, ऐसे ही ये शरीर मेरा कपड़ा है और मैं कॉन्शियसनेस इससे अलग हूं। तो ऐसा करके तब तक उन्होंने 3-4 पेशेंट देख लिए, उनको रेस्ट दिया और ये बॉडी से डिटैच होने का थोड़ा सा उन्हें अभ्यास कराया, पहले कुछ ऑटो सजेशन दिए और तब तक 15-20 मिनट के बाद वही BP उनके सामने डिजिटल उन्होंने नापा तो देखा पहले BP उनका काफी हाई आ रहा था 170/110 के करीब नीचे का हो, फिर ये 20-25 मिनट तक जब उन्होंने खुद ही एक्सरसाइज की कोई गोली वगैरह नहीं दी उसके बाद उनका BP नापा तो काफी मतलब 135/95 जैसा हो गया 90 और फर्दर उन्होंने कहा धीरे धीरे कर। तो ये क्या हमारे थॉट प्रोसेस पर भी हमारा ये बहुत निर्भर करता है, तो इसीलिए ये क्वालिटी ऑफ थॉट बढ़ाएंगे आप तो क्वांटिटी ऑफ थॉट अपने आप कम होगी और बीपी अब ऑटोमेटिकली इट विल स्टार्ट, यू प्रैक्टिस योर सेल्फ। अपने आप भी वहां जाके कभी ऐसा हो तो आप देखिए और उससे देखिए कि कैसे ये ड्रग लेस थेरेपी है। हाँ, बट डोंट लीव योर ड्रग्स, जो भी आप रेगुलर मेडिसिन लेते हैं वो तो करें हैं, लेकिन ये एक एटीट्यूड रखने में और जीवन में ये बहुत मददगार साबित होता है। और तीसरी चीज है डायरेक्शन ऑफ थॉट्स, थॉट्स किस डायरेक्शन में चल रहा है ये बहुत वाइटल है। इसमें जैसे बचपन में हम सबने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, आपने देखा होगा कि सन सूरज के सामने कॉन्वेक्स लेंस रख देते हैं ना तो रेज कन्वर्ज हो जाती हैं और जलने लगता है, कागज रखो या कुछ बचपन में किया होगा ना आप सबने, तो ऐसे ही थॉट्स तो हमारे हैं, लेकिन मेडिटेशन लेंस से जैसे अगर हम उसे कन्वर्ज कर लेते हैं तो कंसंट्रेशन होने से उन थॉट्स में इतनी पावर आ जाती है कि फिर हम जो भी थॉट्स को कमांड देते हैं वो कमांड ओबे करते हैं थॉट्स, और वो कमांड देना बड़ा इजी है। वही तो बहने यहां करवाती हैं, पहले थ्योरी आपको राजयोग शिविर में लेक्चर कराया, फिर लाल लाइट करके थोड़ी सी वो कमेंट्री करते हैं, भाई मैं आत्मा हूं, इस शरीर से न्यारी हूं, ऑटो सजेशन। तो वो ऑटो सजेशन से आप डायरेक्शन, जो वेरियस डायरेक्शन में आपके थॉट्स चल रहे हैं, आप आ गए, बैठ भी गए, लाल लाइट भी हो गई, लेकिन मन के विचारों पर तो कंट्रोल नहीं। अभी कहीं पर ऑफिस में चले जाएंगे, कभी फैमिली की तरफ, कभी बिजनेस की तरफ, कभी बच्चों की तरफ, एग्जामिनेशन की तरफ, विचार इतने डाइवर्ट हो जाते हैं, तो विचारों की एनर्जी भी ना काफी डाइल्यूट हो जाती है। लेकिन किसी मेथोडोलॉजी से अगर आप उन विचारों को एक तरफ कंसंट्रेट कर लेंगे ना, तो क्या होगा, उनमें इतनी पावर हो जाएगी एट ए टाइम, जिससे कि वो विचार, जो आपके मन में विचार होगा वो सिद्ध हो जाएगा कंप्लीट पॉजिटिव। यानी कि विचारों के ऊपर ही सब कुछ आधार है। विचार ही वीक होगा रिजल्ट भी वीक होगा, विचार स्ट्रांग होगा रिजल्ट। तो इसीलिए क्वांटिटी क्वालिटी एंड डायरेक्शन ऑफ थॉट्स, ये तीन यहां पर मेडिटेशन में सिखाए जाते हैं, और ये एक जीवन जीने की विशेष कला है। अगर इस पर जिसने कंट्रोल कर लिया, बाकी चीज पर अपने आप ही वो कंट्रोल होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ना, इसके अंदर यहां पर आप मछली जैसे होती है ना, तो साइलेंस इज गोल्ड स्पीच इज सिल्वर कहा जाता है। मछली कांटे में क्यों फंसती है, आपने कभी सोचा है क्यों फंसती है कांटे में है? जैसे मुंह खोलती है फंस जाती है। ऐसे कई बार बोलने की आवश्यकता हमारी, बोलने में सारे दिन में बहुत एनर्जी। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे थोड़ी हार्ट प्रॉब्लम हुई थी, तो डॉक्टर ने बाद में यही कहा कि आपको रेस्ट करना है, और रेस्ट में सबसे ज्यादा रेस्ट मुंह को देना है। वो हमें पता नहीं चलता सारे दिन में बोलते हैं, बोलने में हमारी बहुत एनर्जी खर्च होती है। तो इसीलिए कहा जाता है साइलेंस इज गोल्डन एंड स्पीच इज सिल्वर, स्पीच माने बोलने के लिए जो ये मुंह खोलते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। कमान से निकला हुआ, देखो मुंह भी जो है ना तीर कमान की तरह, कभी आपने गौर किया ये ऊपर का लिप जो है ना, ये देखिए ऐसा है, नीचे का ऐसा है स्ट्रेट। तो कमान में नीचे का धागा वो तो स्ट्रेट होता है, ऊपर कुछ ऐसा होता है, और इससे निकला हुआ शब्द जो है वो कभी वापस नहीं आता। तो मुंह से तो शब्द ही निकलेगा, कोई तीर तो निकलेगा नहीं। तो लाइक दैट, तो इसकी बात क्या है कि जीवन जीने की एक कला ये है कि, इसीलिए यहां पर एक स्लोगन मिलेगा, आप चाहें तो अपने यहां ले जाइएगा, बहुत छोटा सा है, कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो सोच कर बोलो। ऐसा तो एनर्जी, फिजिकल एनर्जी भी सेव होगी, और सोच कर बोलेंगे तो मेंटल एनर्जी भी सेव। कई बार क्या आवेश में हम बोल तो जाते हैं और बाद में पछतावा होता है, ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था, क्रोध का अक्सर ऐसा होता है। क्रोध आवेश में निकल जाता है, क्रोध का प्रारंभ हमेशा आवेश से होता है, और क्रोध का अंत पश्चाताप से होता है, क्यों मैंने ऐसा बोला। तो इसीलिए वो कहीं पर भी अपने घर में लगा देंगे तो धीरे 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 होते हुए उसके ऊपर काफी कंट्रोल। तो ये इसलिए, तो जीवन में ना मीठा बोलने की कला ये भी एक है, और सोचकर बोलने की कला। मुझे याद आता है एक थोड़ा सा पति पत्नी में डिफरेंस हो गया, थोड़ा था, काफी बोले जा रहे थे, तो पति ने भी पढ़ा हुआ था भाई जब एक बोले तो दूसरे को शांत रहना चाहिए, तो पत्नी बोल रही थी, पति शांत था, जिससे कि भाई ये वाद विवाद कम हो जाए। पत्नी बोलती जा रही थी कि मैं ये पूछ रही हूं तुम जवाब क्यों नहीं देते, वो थोड़ा शांत था बोल नहीं रहा था, और बोलते बोलते उसको और आवेश बढ़ता जा रहा था। तो जब आवेश में व्यक्ति होता है ख्याल नहीं होता उसे क्या कर रहा है, पास में मोबाइल पड़ा हुआ था, मोबाइल उसने देखा उठाया, क्रोध में तो था ही, क्रोध में बुद्धि काम नहीं करती, उसने मोबाइल फेंका तेजी से पति की तरफ, तो पति ने गिरने नहीं दिया, उसे कैच कर लिया, गिरा नहीं, सेफ हो गया। तो पत्नी को और अविषय में कहती हूँ तुम, पूछ रही हूँ मैं ये बात, बोलते क्यों नहीं? तो पति ने क्या बोला, हाँ इनकमिंग फ्री, मोबाइल था ना, इनकमिंग जो होता है वो तो फ्री होता है ना, आउटगोइंग आप करेंगे उसका चार्ज लगेगा, अनलेस इट इज रोमिंग, इनकमिंग कॉल तो सारी फ्री होगी। तो बात इससे शिक्षा क्या मिली कि कोई भी टेंसफुल सिचुएशन भी लाइफ में आए उसको हम एग्जग्रेट ना करें, आगे न बढ़ाएं, उसको हम कूलनेस ऑफ माइंड से उसे अगर सोच के उसे डाइल्यूट, उसके बाद दोनों हंस पड़े और बस बात खत्म हो गई। तो मुंह के शब्द ये इसीलिए देखो कहा जाता है ईश्वर ने भी ना इतने जीव बोलने के लिए जो दी है उसके कंट्रोल के लिए 32 गार्ड और उसके कंट्रोल के लिए ये मास्टर गार्ड इतना प्रोविजन किया है। इस कारण से ये जो जीवन में ना ये हो मीठा बोलने की कला, ये एक बहुत आवश्यक कला है। इसलिए कहा जाता टंग है, क्या कहा जाता है बहनों ने आपको सिखाया होगा ना, टंग टंग हैज गॉट नो बोन बट इट ब्रेक मैनी बोन्स, जवान में हड्डी नहीं होती है लेकिन बहुतों की हड्डियां तोड़ देती है, इतनी फ्लेक्सिबल है लेकिन झगड़ा करा देती है, बहुत चीजें हो जाती हैं। इसीलिए ये जीवन जीने की एक मुख्य है। हम लोग गो लिटल फास्ट, बचपन में हम सब ने ये कहानी पढ़ी होगी, देखिए शेर जाले में फंस गया, सोच रहा है मैं क्या करूं, एक बार उसने चूहे की रक्षा की थी तो चूहे ने कहा अरे आप इसमें चलो मैं आपका जाल काट देता हूं, जाल कट गया, शेर स्वतंत्र हो गया, थैंक यू बोल के चला गया। इससे शिक्षा क्या मिली, बड़ी छोटी सी बच्चों की कहानी है, क्या मिली, ये ऊपर शिक्षा लिखी हुई है, ये बहुत बड़ी कला है, बचपन से हम पढ़ते तो आ रहे हैं। इवन ए स्मॉल पर्सन कैन हेल्प यू इन क्रिटिकल टाइम्स। कई बार हम छोटा ईगो फैक्टर आ जाता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, तो इसीलिए नेवर अंडरमाइन द वन हु लुक्स वीक एंड जस्ट स्मॉल। तो इसलिए हमेशा सबको उस दृष्टिकोण से देखें, मान सबको क्या चाहिए, मान चाहिए, प्रेम चाहिए, सम्मान चाहिए। तो जीवन जीने की एक कला जो हरेक के लिए ये वैलिड है, ईगो ब्रिंग्स डाउनफॉल। इसीलिए देखिए आई, ये एक सेपरेट ही सब्जेक्ट है, हाउ टू कॉन्कर एंगर, अलग सब्जेक्ट, हाउ टू कॉन्कर योर ईगो। तो इसीलिए ईगो ब्रिंग्स डाउनफॉल, ईगो इज रिप्रेजेंटेड बाय विच लेटर ऑफ द अल्फाबेट, अल्फाबेट का ऐसा कौन सा लेटर है जिससे ईगो रिप्रेजेंट होता है, आई मैं, बस ये मैं ये कर सकता हूं, मेरा ये विचार है आई। और आप देखो आई को कभी भी लिखोगे ना, कभी भी आई अकेले में भी लिखोगे उसे स्मॉल आई नहीं लिखेंगे, कैपिटल आई लिखे, कैपिटल आई, बड़ा आई। तो इसीलिए आई, उसको ईगो को अगर छोटा करना हो तो क्या करेंगे, ईगो हम चाहते हैं ना हो रहे, ईगो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अहंकार को अगर कम करना हो छोटा करना हो तो क्या करना पड़ेगा, नहीं दैट इज लाइट कंसिडरिंग द अल्फाबेट, आई है कैपिटल, उसको अगर स्मॉल आई बनाना है तो क्या करेंगे, उसके ऊपर एक बिंदी लगा देंगे, आई के ऊपर एक बिंदी लगा दो तो स्मॉल आई हो जाएगा, ईगो छोटा हो जाएगा। बस मेडिटेशन में यही तो बात सिखाते हैं, ये शरीर भी हमारा आई की तरह है, कैपिटल, खड़े हो जाओ सीधा एकदम आई डंडा, लेकिन ये जो बिंदी है ना कॉन्शियसनेस आत्मा, जो आपको मेडिटेशन में आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, प्रेम स्वरूप हूं, सब आत्माएं भी प्रेम स्वरूप है, शांति स्वरूप है, ये सजेशन जो है, ये कॉन्शियसनेस, ये बिंदी अगर लग गई हमारा सबका ईगो स्मॉल हो जाए। तो जीवन जीने की एक कला यही है, इसको हम इस रीति से देखें कि कैसे हम अपने ईगो को वो करें। बिल्कुल छोटी बातें हैं, क्यों, टिप्स वाली। जीवन में पतंग तो सबने उड़ाई होगी है, जीवन में जब बहुत तेज 14 जनवरी को पतंग महोत्सव भी मनाते हैं। मैं भी जब ONGC में था, गुजरात में पोस्टेड था, बहुत पतंग का चारों तरफ, आजकल तो भारत में कई जगह होता है, वहां देखा। लेकिन पतंग भी ऊपर कब जाती है, कई बार जब हवा होती है, कई बार हवा नहीं होती, पतंग उड़ाते हैं तो थोड़ा थोड़ा उड़ती रहती है, ऊपर नहीं जाती है। तो ऐसे ही जीवन के अंदर भी ना, जीवन रूपी पतंग ये हमारी ऊपर ऊपर बहुत हाई स्पिरिट में कब जाएगी, जब ये हवा बहुत तेज होगी। और इसीलिए कहा गया है तूफान को क्या समझो, तोहफा समझो। जीवन में तूफान, एडवर्स सिचुएशन, परिस्थितियां, परीक्षाएं अगर आती हैं, उनसे हम घबराए नहीं, उनको ईश्वर का तोहफा समझे, तो उससे क्या होगा, वो आगे बढ़ते रहेंगे। तूफान को तोहफा समझ, जीवन रूपी पतंग हमारी हाई और हाई, मोर एंड मोर हाई उड़ती रहेगी और न्यू हाइट्स पर हम पहुंच जाएंगे। ये एक उन्नति का, तरक्की का साधन। एग्जाम भी जब कोई हाई 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 देता है तो उसका प्रमोशन और होता है। IAS बड़ा समझा जाता है एग्जाम, IAS में पिरामिड, कोई भी पिरामिड, अल्टीमेटली कितने कम सेलेक्ट होते हैं और ज्यादा अपीयर होते हैं। तो लाइक दैट, तूफान को तोहफा समझेंगे तो ये जीवन के अंदर हमेशा हम आगे बढ़ते रहेंगे और ये पतंग की तरह ऊपर। और साथ में क्या होना चाहिए, वाइल एंजॉइंग स्मॉल प्लेजर ऑलवेज थिंक बिग थॉट्स। थिंकिंग के ऊपर बहुत है, जो आपको ये मेंटल एस्पेक्ट चल रहा है अभी इस समय है, तो ये क्या करना चाहिए। देखिए इसमें बताया गया है, ये आदमी चला तो रहा है साइकिल, लेकिन ही इज थिंकिंग, यस वन डे आई विल बी सो हाई दैट द कार, आई विल बी ड्राइविंग द कार, आई विल बी हैविंग ए कार। तो जीवन में खुशी रहेगी, ऑलवेज थिंक हाई। इसीलिए सपने देखो, जो व्यक्ति सपने देखना अगर नहीं जानता है, वो कभी हाइट्स तक नहीं पहुंच सकता। तो पहले सपना देखा जाता है इन आंखों से, सपना वो नहीं है जो बंद आंखों से आपने देखा, आंख खुली और सपना गायब, नहीं है। सपना वो है जो आप खुली आंखों से देख करके और फिर उसके बाद जब जगे, जीवन में जागृत हो, उसको अचीव करने के लिए लग जाए। वी मस्ट हैव सम टारगेट, सम गोल इन लाइफ। तो ये इसके अंदर ये बताने का प्रयास। आप यहाँ आए ना हमारे इंस्टीट्यूशन में, जो कनेक्टेड होंगे थोड़े बहुत, हमारे यहाँ क्या लक्ष्य दिया जाता है ब्रह्मा कुमारी में, यहाँ पर क्या बनते हैं, यहाँ पाएंगे आपको क्या बताया गया, क्या लक्ष्य है यहाँ, मतलब मनुष्य से देवता, यानी नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का लक्ष्य। अब देखने में तो ये लगता है बहुत बड़ा है और शेख चिल्ली की तरह बड़ा इमेजिनरी वगैरह हो, लेकिन मनुष्य से देवता बनना माने देवता ही लक्षण धारण करना, उन गुणों को धारण करना, सो दैट प्रोवाइड्स प्लेजर। जीवन में पांचों उंगलियां तो हाथ में भी बराबर भगवान ने नहीं बनाई, कोई छोटा होगा कोई बड़ा, ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई वर्किंग क्लास में, कोई मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव है, कोई हाई लेवल, एंड लाइक दैट सब अलग अलग है। लेकिन वाइल एंजॉइंग स्मॉल प्लेजर थिंक ऑलवेज बिग, ऑलवेज हाई। तो इसीलिए जीवन का लक्ष्य, अभी भी आप यहां से जाएंगे ना, बहुत लोग आपको कहेंगे अरे भाई सीख क्या है, आप भी कहेंगे बहुत अच्छा रहा, बहुत आनंद रहा, लेकिन कीप सम टारगेट विद यू। मैं जा रहा हूं, यहां से जब जाएं एक कमी छोड़ के जाइएगा, एक गुण धारण करके जाइए, लिख करके। लिखने से क्या होगा, तो जो चीज आपको बहुत परेशान करती है, मानो किसी में क्रोध है, हम चाहते नहीं क्रोध करना, यहां लिख करके जाइएगा और बाबा के कमरे में जाके या मेडिटेशन, उसमें आज मैं यहां क्रोध छोड़ के जाता हूं, उससे थोड़ी स्ट्रेंथनिंग, विल पावर में और स्ट्रेंथ। जब भी आपको क्रोध आएगा, आपको तुरंत याद आएगा, नहीं भाई मैं वहां गया था, क्रोध छोड़ के आया था, एक इट विल बी ए टूल इन हेल्पिंग यू। इसी तरह एक गुण धारण करके जाइएगा, भाई कोई मधुरता का या सहनशीलता का, उतावलेपन का छोड़ के जाइएगा, एंड इस रीति से प्रेम का, जो आप समझते हैं जि किस गुण में आप लैक कर रहे हैं। सीनियर को जूनियर को हैंडल करना पड़ता है, जूनियर को सीनियर्स के साथ, तो कई बार पेशेंस बहुत आवश्यक होती है। दूसरे को सुनने की शक्ति, हम बोलना चाहते हैं लेकिन सुनने की शक्ति, ये भी एक गुण है इसको धारण करने का। लाइक दैट सोचिएगा अपने कमरे में जाके, तो वो छोड़ के जाएंगे तो वो अपने पास भी लिख करके रखिएगा पर्स में, या दूसरे को घर में भी बता के रखेंगे, तो उससे क्या होगा, जब भी आपको अगर वो कमी का अटैक होगा आपको तुरंत ही घर वाले भी मदद करेंगे। मतलब वी शुड बी सिंसियर टूवर्ड अवर सेल्फ एंड टूवर्ड्स अवर एफर्ट्स, ये है। और इसीलिए हर मनुष्य में, और ये क्या, हर मनुष्य में दो शक्तियां विशेष होती है, एक है याद रखने की शक्ति, एक है भूलने की शक्ति। दो शक्ति हम सब में होती हैं, लेकिन लाइफ की ट्रेजेडी क्या है कि जो बात हम याद रखना चाहते हैं वो तो भूल जाते हैं, और जो बात भूल जानी चाहिए वो याद रहती है। दैट इज रिवर्सल, वो रिवर्स हो जाती है। इसीलिए क्या करना चाहिए, वो इसमें बताया गया है, डोंट फॉरगेट ए लिटिल कर्टसी एंड डोंट रिमेम्बर ए स्मॉल। दूसरे की छोटी भी गलती होगी हमें याद रहेगी, इसने ये करा, इसमें ये कमी। और कई बार हम अपने को चला लेते, हमारे में 10 कमी भी होंगी, अरे चलता है वो कर लेते हैं। इसीलिए ये याद रखने की शक्ति और भूलने, वो बहने आपको और उसमें बताएंगी कैसे किस शक्ति को किस समय पर यूज करना चाहिए। इवन कंप्यूटर में भी जब बहुत भर जाती है, मेमोरी फुल हो जाती है, उसे भी एरेज करते हैं, स्लो हो जाता है नहीं तो प्रोसेस। इसी तरीके से हमारी मेंटल पावर भी तो लिमिटेड है ना, भरते रहेंगे उसमें एरेज नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो इसीलिए उसे कहते हैं साथ में क्षमा करने की। भूलना कैसे होता है, किसी की कमी को हम भुला नहीं पाते, क्षमा नहीं कर पाते। आवश्यकता यह है क्षमा करने की। हमें याद है हम लोगों ने एक कोर्स बहुत साल पहले किया था, तो हम लोगों को लिखाया गया था, उस वक्त तो ये मोबाइल वगैरह होते नहीं थे, और ये कि सबको पोस्ट कार्ड बांटे गए थे, आप अभी यहीं बैठ के लिखो, जो भी आपका ऐसा व्यक्ति है जिससे आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, वो व्यक्ति ने आपके साथ बुराई की है, लेकिन आप इनिशिएटिव लेके अभी लिखो, उसका एड्रेस लिख के पोस्ट करो कि भाई चलो जो हुआ बीता सो उस बात को हम भूल जाते हैं, आइए हम लोग मिलके जीवन का एक नया अध्याय शुरू करें, मैं आपकी सब पुरानी बातों को भूल के आपसे मित्रता पुनः। तो हम वेट करते हैं दूसरा पहल करें, हम पहल नहीं करना चाहते, उस वजह से ये बात हो जाती है। तो इसीलिए आवश्यकता ये है कि अपने इनको क्षमा करो और क्षमा मांग लो, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा वो क्षमा नहीं कर पाएगा, वीर होगा वो क्षमा कर पाएगा। तो आज इंट्रोस्पेक्शन करो, कोई भी आपका सो कॉल्ड, एक्चुअली दुश्मन होता नहीं है, सो कॉल्ड आपको लगता है ये मेरा दुश्मन है, ये निगेटिव है, तो उसको क्षमा करने का प्रयास करो, तो आप कायर की श्रेणी से निकल के वीरों की श्रेणी में आ जाएंगे। और क्यों नहीं भूल पाते, क्योंकि हम पास्ट को नहीं भूल पाते। हम सबने बचपन में कबीर दास को पढ़ा है ना, कबीर दास ने कहा था चक्की, घर में पुराने जमाने में चक्की होती थी ना, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। घर में माताएं चक्की चलाते थे, अनाज बीच में डालते थे, पिसकर निकल जाता था, तो दो पाट, तो दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। तो जीवन के दो पाट कौन से हैं, पास्ट और फ्यूचर। या तो हम पास्ट का चिंतन करते रहेंगे या फ्यूचर की चिंता, क्या होगा, अभी लड़की की शादी बाकी है, लड़के का सेटलमेंट बाकी है, मकान बनाना है, अभी ये करना है, तो फ्यूचर की चिंता या पास्ट का चिंतन, ये क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों किया, तो इन दोनों में मनुष्य पिस जाता है। तो दो पाटन ये है, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, और खूंट पकड़कर जो रहा उसे पीस सका न कोई। चक्की होती है ना, वो घर वाली चक्की पुराने जमाने की, जिसने देखी है वो हाथ खड़ा करे, काफी ने देखी है, नए लोगों ने, आजकल तो होती नहीं होगी शायद, तो उसमें जो बीच में अनाज रह जाता था वो साबुत रह जाता था, थोड़ा पिसता नहीं था, खूंट पकड़कर जो रहा उसे पीस सका। तो वर्तमान, पास्ट और फ्यूचर में ही अगर हम रहेंगे वो चिंता का विषय, लेकिन खूंट प्रेजेंट वो है वर्तमान, इसीलिए उसे प्रेजेंट कहा गया है। जीवन भी एक प्रेजेंट है, लाइफ इज ए प्रेजेंट, गॉड ने हमें प्रेजेंट दी है, तो इसीलिए वर्तमान में अगर हम जीना जानते हैं, ये जीवन की एक गिफ्ट है, वर्तमान है। तो इसीलिए जीवन जीने की एक सबसे बड़ी कला ये भी है कि हम वर्तमान में सदा जीते चलें और भूतकाल से लाभ लें, ये नहीं कि नहीं, भूतकाल के अनुभवों से लाभ लें, भविष्य की प्लानिंग करें। प्लानिंग इज एसेंशियल, रिटायरमेंट होने वाला है तो प्लानिंग तो करेंगे कि ये मेरा फाइनेंशियल रिटर्न होगा, ये तो हम कर लेते हैं, लेकिन टाइम की हम प्लानिंग नहीं कर पाते। और हम उससे क्या होता है, कितनी चीजें हमारे यहाँ, एक आपके यहाँ भी होता होगा प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट, वो एक कोर्स होता है जो हमारे यहाँ, तो वो कोर्स उसके अंदर खास ये होता है कि जब रिटायरमेंट हो हम कैसे प्लानिंग करें हमारे टाइम की, थॉट्स की, अपनी एनर्जी की, उसके द्वारा हम कैसे उसको सेव करके आगे बढ़ते चले। तो इसीलिए जीवन में हर अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना चाहिए। सिंपल, अब देखिए ये एक कुत्ता है, सो रहा है, खुर्राटे भर रहा है, मनुष्य भी कभी कभी खुर्राटे भरता है, तो वो तो सोता है लेकिन आसपास वाले जागते हैं। इस तरीके से अब ये तो सो रहा है लेकिन पास में बिल्ली थी वो जाग रही थी, उसने देखा भाई इसका खाना रखा है, बड़ा टेस्टी है। वैसे बिल्ली कुत्ते से डरती है लेकिन वो धीरे धीरे आई, उसका खाना वाना जो खाया वो चली गई। अपॉर्चुनिटी, मौके का लाभ उठाना चाहिए। ऐसे ही आप यहां पर आए हैं तो एक घूमने के लिए माउंट आबू या सिर्फ ट्रेनिंग करने के लिए नहीं आए हैं, इट इज ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू यू, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने दी है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपके जीवन की दिशा को ही बदल देगी। इस अपॉर्चुनिटी का पूरा लाभ लें, और असली लाभ तब मिलेगा, यहां तो आप 3 दिन के बाद चले जाएंगे लेकिन अपनी अपनी जगह जहां जाएं वहां इसके ब्रांचेज हैं। तो ये मेडिटेशन 2 दिन में थोड़ा आइडिया तो आपको आ जाएगा लेकिन पूरा उसका लाभ नहीं ले सकेंगे, क्योंकि मुझे भी मेडिटेशन करते हुए बहुत साल हो गए लेकिन अभी भी मैं गारंटी से नहीं कह सकता कि अगर मैं आधा घंटा बैठूं तो पूरा आधा घंटा योग लग जाएगा। अभी भी कितने मिनट जो अपने से अपनी जॉब होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनका ध्यान आ जाता है, बहुत बातों की तरफ बुद्धि चली जाती। तो बेस्ट यही है कि इस अपॉर्चुनिटी का लाभ लेके आप जहां से आए हैं, कलोल से आए हैं, बरेली से आए हैं, कहीं से भी आए हैं, वहां की लोकल ब्रांच का पता लेके जाएंगे और वहां थोड़ा सा मेडिटेशन की रियल विधि और सीख लेंगे, तो आपको जीवन में स्ट्रेस फ्री लाइफ का आप टोटल अनुभव कर सकेंगे। ये आपके लिए बहुत आवश्यक है, इसीलिए इसके लिए और क्या करिए, टेक टाइम टू थिंक। कोई भी डिसीजन एकदम इमीडिएटली नहीं ले लीजिए। देखिए ये टीवी में आजकल आता है ना, काफी आसन प्राणायाम करना भी चाहिए। मैं आपको हंसी की बात बताता हूँ, मैं भी एक्चुअली थोड़ा प्राणायाम, ये रामदेव का ये आसन भी करता था, ये अनुलोम विलोम और ये सारी चीजें, हाँ कपाल भाती वगैरह, लेकिन फिर भी मुझे एट द एज ऑफ 68 हार्ट अटैक आया। तो ठीक है, वो तो आया, उसके बाद एंजियोग्राफी हुई, एंजियोप्लास्टी हुई, कुछ महीने पहले की बात है, 3 महीने पहले। मैंने डॉक्टरों से पूछा ये हुआ क्यों, क्योंकि ये कहते हैं मैं टहलता भी था आधा घंटा 40 मिनट, मैं ये कपाल भाती भी करता था, अनुलोम विलोम भी, तो फिर तो ये आना नहीं चाहिए आर्टरी सारी। तो उन्होंने जब एंजियोग्राफी, उन्होंने कहा आपकी बाकी सब आर्टरी तो खुली है लेकिन एक आर्टरी जो ब्लॉक हो गई, मेन आर्टरी, उसकी वजह से ही 95% अटैक आया। लेकिन ये क्यों, जब हम अनुलोम विलोम भी किया, तो मेजर डॉक्टरों का, दो लीडिंग मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट, उनका क्या जवाब था कि अगर आप ये सब नहीं करते, घूमते फिरते नहीं, तो आपको ये अटैक आज से 10-15 साल पहले आ गया होता, 50 साल की उम्र में, 52-55 में आ गया होता, लेकिन आप ये करते रहे, उसकी वजह से वो आर्टरीज उतनी डिग्री से ब्लॉक नहीं हुई, लेकिन ब्लॉक तो लाइफ में प्रोसेस है, खान पान, स्ट्रेस, टेंशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कई सारी चीजें होती हैं। तो इस कारण से अभी जैसे इसमें यह सिखाया जाता है टीवी में, शीर्षासन करो, अब ये कर रहा है, लेकिन अब ये व्यक्ति बैठा हुआ ना यहाँ पर, ये व्यक्ति देख रहा है मुझे करना चाहिए, लेकिन नकल सीधा नहीं, अगर रिवॉल्विंग चेयर पर ही वो शीर्षासन करने लगेगा तो क्या होगा, ये ना। तो नकल के लिए भी क्या चाहिए, अकल चाहिए। तो इसमें भी फिर मैंने एनालिसिस किया तो मैंने पाया, मैं करता तो ये जरूर था, लेकिन जितना करना चाहिए, वो कहते हैं एक घंटा ये करो, पौना घंटा ये, टोटल मिला के इतना होना चाहिए, उतना टाइम डिवोट अगर नहीं कर पाते थे तो रिजल्ट मिला कि माय हार्ट अटैक वाज पोस्टपोन्ड फॉर सम 10-15 ईयर, बट अल्टीमेटली आई कुड नॉट प्रिवेंट इट। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज, जो है कि रिक्वायर्ड डिग्री में कोई डोसेज है मेडिसिन की, 3 बार गोली खानी, आप एक ही बार खाओगे या 2 बार, तो उसका रिक्वायर्ड इफेक्ट नहीं होगा। तो कहने का भाव यह है, जीवन में हम कोई करे, टेक टाइम टू थिंक, डोंट जस्ट रिएक्ट। अक्सर होता क्या, हम एकदम रिएक्ट कर जाते हैं, कोई बात होती है तुरंत रिएक्शन, एक्ट बट डोंट रिएक्ट इमीडिएटली। तो जीवन के अंदर ये बहुत आवश्यक है। और इससे भी एक और आवश्यक है, आजकल वनडे मैच होते हैं ना, तो एक 20 ओवर्स मैच हो रहा था, 50 ओवर, ट्रेडिशनल राइवल इंडिया पाकिस्तान, बहुत बढ़िया फाइनल मैच। सोचा ऑफिस गवर्नर ने, अरे भाई आज तो छुट्टी लेनी चाहिए, ऑफिस से उसने छुट्टी ली, आज मैच एंजॉय करेंगे, 50 ओवर्स मैच। आया घर में, आराम से सिगरेट पी रहा है, पैर फैला के टीवी ऑन किया, मैच देखना शुरू किया। मैच देख रहा है, बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है। थोड़ी देर में उसकी मिसेज आई और भाई ये छोटा बच्चा है, इस बच्चे को भी खिलाते रहो और मैं जरा मैच देख, घर का काम कर लेती हूँ। तो उसने कहा ठीक है। बच्चा आया, सो रहा था, तो जब मैच वो देख रहा था तो बच्चे को उठा के सामने बेड पर सुला दिया, मैं मैच एंजॉय करने लगा। एक टीम पूरी हो गई, दूसरी टीम चल रही थी, 45 ओवर्स का मैच हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद मैच जब क्रिटिकल स्टेज में था, कुछ ओवर बचे हुए थे और बड़ा एनी वेयर इट कुड टेक, मतलब शिफ्ट द रिजल्ट, बच्चा रोने लगा। तो पहले सारा ध्यान तो मैच की तरफ था, बच्चे को कोशिश करी कि भाई चुप हो जा, नहीं हुआ, अब क्या करे। अब क्योंकि पहले वो जब मैं एक्साइटेड स्टेज में होता है मैच ना, तो बस सिगरेट तो निकाल के रख दी थी, बच्चा भी बॉटल से दूध पी रहा था, लेकिन बच्चा भी सो गया तो बॉटल निकाल के रख दी। उसके बाद जैसी जब बच्चा रोने लगा और वो मैच की फाइनल स्टेज में था, वो जल्दी में क्या किया उसने, देखो बॉटल अपने मुंह में लगा ली, सिगरेट बच्चे के मुंह में लगा दी, दोनों चीज रखी हुई थी ना, इट इज टेंसफुल स्टेज। तो होता क्या है, हम सबके साथ भी यही पर्टिकुलर ये इंस्टेंस ना हो, जैसे टेंशन और स्ट्रेस आया, अवर माइंड डजंट गिव द राइट डिसीजन। हम टेंशन स्ट्रेसफुल स्टेज में कभी भी हम राइट डिसीजन नहीं ले सकते, इसीलिए उस डिसीजन को टाल देना चाहिए, योर टेंस मोमेंट। और जैसे अभी आप हंस रहे हैं ना, हम लोगों को भी जब भी कभी स्ट्रेस अगर आएगा ना, हम लोगों को स्ट्रेस होगा और दुनिया देख के मजा लेती है कि देखा इनके साथ ये, मतलब नोबडी एक्चुअली इज लाइक। तो भाव क्या है, ट्राई टू अवॉइड दिस स्ट्रेसफुल सिचुएशन जीवन के अंदर। और ये कब होगा, जो आप सीख रहे हैं मेडिटेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज, बेस्ट तो यह है इस सिचुएशन को अवॉइड करिए, लेकिन ऑलवेज इट इज नॉट पॉसिबल टू अवॉइड द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो स्ट्रेस आए तो उसे मैनेज करना सीखिए, और मैनेज करके बस जिससे वो लीस्ट हार्म आपको कर सके अपनी सिचुएशन, वो होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अभी ये भी देखे, ये स्ट्रेस क्रिएट करने वाली बात हो गई, आगे गाड़ी चली नहीं रही है। विनर्स नेवर क्विट, क्योंकि इसके अंदर चारों पहलू हैं। हमने मेंटल पहलू पर ज्यादा ध्यान दिया, ये एक प्रोफेशनल एस्पेक्ट है, तो इस प्रोफेशनल निगोशिएटिंग, ये देखिए, आजकल निगोशिएशन का जमाना है, गिव एंड टेक का। हम चाहते हैं संबंध में सुधरे या वो हो, तो जब ऐसा सिचुएशन यही होनी चाहिए कि लाइफ के अंदर कि गिव एंड टेक बिजनेस। अब आई डोंट नो वेयर इट इज गोइंग। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे से कि दूसरा हमारे अनुकूल व्यवहार करे। ये निगोशिएटिंग स्टेज में तो देखिए यार, चूहा और बिल्ली यूजुअली नहीं होते हैं, लेकिन ज्वाइंट वेंचर का जमाना है आजकल, तो ज्वाइंट वेंचर के हिसाब से मतलब वी शुड बी रेडी टू गिव एंड टू टॉम। इसी के साथ साथ हमारा सिचुएशन ये होनी चाहिए, वन जंप। हाँ, वन हैज टू क्रॉस ए डिच इन वन जंप ओनली। एक आदमी जा रहा था जंगल में, और जंगल में जाते हुए उसने जाते जाते उसने देखा भालू आ रहा है। उसने फिर क्या किया, सोचा भाई मैं बैक जाने लगा। वो भालू आगे एक डिच आई, उसने सोचा मैं डिच को क्रॉस कैसे करूं, बहुत ऊंची डिच है, पीछे से भालू आ रहा था, आगे खाई थी। अगर वो ये सोचे कि मैं चलो एक जंप में पार नहीं कर सकता, दो जंप में या तीन जंप में पार करूं, क्या रिजल्ट होगा? यू कैन अंडरस्टैंड। तो वी हैव टू क्रॉस ए डिच इन वन जंप ओनली मीन्स कोई अगर सिचुएशन ऐसी आती है तो वी हैव टू डील द सिचुएशन विद अवर फुल हार्ट एंड माइंड। हाफ हार्टेडली अगर कोई सिचुएशन को हम हैंडल करेंगे ना तो रिजल्ट नहीं। आप यहां भी आए हैं, आप कहेंगे यस मेडिटेशन इज गुड, लेकिन हाफ हार्टेडली अगर आपने उसे करा तो उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट जैसे कि आपको नहीं आएगा। एंड फॉर ओवरकम वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एंड, फॉर ओवरकमिंग हर्डल्स व्हाट यू हैव टू डू, फ्लाई। कैन यू फ्लाई लाइक दिस विदाउट एनी एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर? इट इज ए मेंटल फ्लाइंग। यहां से आपको ये दो पंख जो मिल रहे हैं ना, ये दो पंख कौन से हैं? ज्ञान और योग। नॉलेज इज ए थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, मेडिटेशन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। वैसे भी स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग होती है, पहले थ्योरी बताई जाती है, फिर आप अपने वर्क फील्ड पर उसे ग्राउंड लेवल पर जाके इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये थ्योरेटिकल नॉलेज, आत्मा परमात्मा योग ये सब बता रहे हैं, तो आपको ये दोनों पंख मिल रहे हैं, क्योंकि जीवन में ना जो हर्डल्स आएंगी उन हर्डल्स को आप सक्सेसफुली तभी क्रॉस कर सकेंगे जब आप हर्डल्स को एक दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे। जैसे फ्लाइट में जाते हैं, नीचे के बड़े बड़े पहाड़ भी होंगे, नदी होंगी, हर्डल्स होंगी, आप क्रॉस कर जाएंगे क्योंकि यू आर लुकिंग फ्रॉम अनदर एंगल हायर स्टेज से। ऐसी मेंटली जब आपकी हायर स्टेज होगी थ्रू दिस स्पिरिचुअल नॉलेज एंड मेडिटेशन, तो जीवन में जो समस्या आएंगी आप उनको इजीली क्रॉस कर सकेंगे और आगे जीवन में बढ़ सकेंगे। एंड अब टूवर्ड्स द एंड, समटाइम्स व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम हियर व्हाट यू शुड डू, व्हेन यू आर गोइंग, क्वाइट पॉसिबल लाइफ में आपको हमेशा कोई वो सिचुएशन न रहे, समटाइम्स यू मे हैव द फीलिंग, ऐसा फीलिंग होगी डाउन, आज तो यहां खुश हैं, वहां पर ऐसी फीलिंग अगर होगी तो फिर क्या होगा? ऐसी सिचुएशन के अंदर आप यहां क्या करिए, यहां से कुछ आप ऑडियो कैसेट ले जाइए, कोई वीडियो कैसेट, कोई लिटरेचर, आप यहां से करस्पोंडेंस कोर्स से कांटेक्ट में भी रह सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको यू विल कम बैक टू दिस ओरिजिनल स्टेज, खुशी की स्टेज में, लेकिन कॉन्टिन्यूअस कॉन्टेक्ट इज नेसेसरी। अभी जैसे इसका ही आपने देखा ना, थोड़ी देर के लिए ये इनऑपरेटिव हो गया था, क्वाइट पॉसिबल इसका जो कंटिन्यूअस वो है वो कंटिन्यूटी सेल लूज हो गया हो और इट वॉज नॉट वर्किंग, सो इट वॉज नॉट ऑपरेटिंग। बिजली भी अगर फ्यूज, छोटा सा फ्यूज चला जाए, कंटिन्यूटी नहीं रहेगी और इट विल नॉट वर्क। इसी तरीके से यहां से जब आप जाएंगे ये इन सब चीजों का परमानेंट आनंद उठाने के लिए आवश्यक है कि आप इसकी कंटिन्यूटी को उसको मेंटेन करें. एंड टुवर्ड्स दैट एम्प्टी योर माइंड एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू द बेड. आपको ये और बताया जाएगा, हाँ ऐसे आप एम्प्टी कर सकते हो, खोपड़ी खोल सकते हो, खोपड़ी का ढक्कन, हाँ इस खोपड़ी का ढक्कन खोलना सीखिए. आपको नेक्स्ट लेक्चर में है, मैं देख रहा हूँ डॉक्टर गुप्ता जी आए हैं, वो इसमें फिजिकल एस्पेक्ट जब हेल्थ का बताएंगे और इसमें कैसे ये खोपड़ी का ढक्कन खोला जाता है और दिन भर के अंदर जो कुछ भी आपने इसके अंदर भरा है ना, वेस्ट थॉट है, इरिटेशनल थॉट्स हैं, फ्रस्ट्रेशन वाले, इन सब को डंप करके आप सोएंगे बहुत बढ़िया कंफर्टेबल स्लीप. एंड व्हेन यू गेट अप इवन लेसर नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप विल प्रोवाइड यू डीप सेंस ऑफ रिलीफ. उसके अंदर आपको 5-6 घंटे की वो रहेगा. देखिए सो इट इज कन्वेइंग अस हाउ टू कीप योर दिस फैकल्टी ऑलवेज इन ऑर्डर. और अंत में बस दिस इज द सेकेंड लास्ट स्लाइड. रिकॉग्नाइज योर फ्रेजाइल लिंक. ये बहुत यहां पर आप आए हैं ना, तो आप अपने एकांत में थोड़ा बैठिए. अब ये जो चेन है ना, आप देख रहे हैं ये चेन, अब चेन भी है लॉक भी है, लेकिन हमारा ये प्रेम शांति आनंद खुशी सुख जो आपको यहां पर मेडिटेशन में सिखाया जा रहा है, वो खजाने का हम प्रैक्टिकल लाइफ में अगर अनुभव नहीं करते हैं, क्यों? एक कारण उसका ये हो सकता है कि आपका ये चेन की कोई कड़ी टूटी है, तो उसकी वजह से ये खजाने जो है ना, ये खजाने लीक होते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं. तो आप जाने से पहले एकांत में एक बार जरूर बैठिएगा, 10 मिनट बाबा के कमरे में जाइए, चाहे बिल्कुल एकांत में, और इंट्रोस्पेक्शन करके आप देखिएगा कि कौन सी और वीकेस्ट लिंक है. तो आपकी अंतरात्मा गवाही देगी, मेरे में क्रोध है, घृणा है, या ईर्ष्या का संस्कार है, या इम्पेशेंस हूं मैं, इन सब का आप उसे लिख दीजिएगा. और जैसा मैं बता रहा था, उसको आप बाबा के कमरे में सच्चे दिल से जाके उसे डाल के, हे प्रभु आज मैं ये अपनी कमी कमजोरी को छोड़ के जा रहा हूं. मुझे ये बताते हुए खुशी होती, यहां पर ऐसे लोग आए जो एक दिन में 15 डिब्बी सिगरेट 20 डिब्बी बॉक्सेस, नॉट सिगरेट बट बॉक्सेस पी जाते थे, और जब उन्हें बताया गया उन्होंने कहा भी बड़े इम्पॉसिबल, मैं नहीं छोड़ सकता, लेकिन यहां से सच्चे दिल से वो छोड़ के गए और आज तक उनके लेटर आते हैं, उसके बाद से हमने कभी भी सिगरेट का, इस बात को 15 साल हो गए, 18 साल, लेकिन विद ऑल ओपन हार्ट आप एक्सेप्टेंस करेंगे तो फ्रेजाइल लिंक को, अपने वीक पॉइंट को आप एक्सेप्ट करके और फिर करें. एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट, एम्पावर. जीवन जीने की कला का वो सब तो देखा, लेकिन ये जीवन जीने की कला का एक सिंबल है. कौन है ये? गणपति बापा मौर्य. गणपति का तो जानते हैं, इनका जो ये एक बड़ा सिर है वो इस बात का प्रतीक है, ऑलवेज थिंक ब्रॉड पॉजिटिव एंड एज योर एटीट्यूड पॉजिटिव. मैं डिटेल में नहीं जाता, दीज आर ऑल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. सेकेंड थिंग, लार्ज ईयर्स, बड़े कान इस बात का प्रतीक है, अपने कान सदा खुले रखिए. आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, मैं भी ONGC में 28 साल तक रहा, आप अपने जूनियर की या किसी के कोई डिसग्रंटल्ड एलिमेंट है, आके आपने उसकी प्रॉब्लम सुन भी ली ना, तो उसका हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. कई बार हम सुनना नहीं चाहते, कई बार ऐसा होता है थोड़ा सा उसने बोला, तो इसीलिए ट्राई टू कीप योर ईयर्स ऑलवेज ओपन, शेयर द प्रॉब्लम विद अदर, आधा तो उसका दिल वैसे ही हल्का है. छोटी आंख इस बात का प्रतीक है, एक मेडिटेशन का भी प्रतीक है, कि आप जब आरती करते हैं, पूजा करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा आंखें बंद होने लगती हैं, तो इसीलिए आप कर्म भी करिए, कर्म के साथ साथ योग युक्त भी रहिए. उससे क्या होगा, कर्म और योग दोनों साथ साथ चलेंगे. ये आपका मेडिटेशनल स्टेज गणपति की छोटी आंख का प्रतीक है. साथ साथ सूंड किस बात का प्रतीक है, नाक इस बात का प्रतीक है कि ये लॉन्ग नोज इस बात का प्रतीक है, ऑलवेज हैव द ओपन माइंड। कुत्ता होता है, जानवर होता है, सूंघता 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 चलता है, और जहां पर प्रे मिला उसका शिकार मिला, फट से मारा खाया। ऐसे ही ऑलवेज कीप दिस योर मेंटल फैकल्टी ओपन एंड अकॉर्डिंगली बिहेव टू पोक अराउंड व्हाट इज न्यू। हर चीज में न्यू 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 थिंग्स आती जाती हैं, एंड उसके साथ साथ कीप योर स्मॉल माउथ, कम बोलने का प्रतीक है। डॉक्टर साहब को यहां देख के मुझे भी आ रहा है, मुझे डॉक्टर साहब ने बोला है कम बोलो, इसीलिए आई विल लाइक टू फिनिश इट, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही मुझे जो हार्ट प्रॉब्लम हुई थी जो मैंने बताया ना आपको, शेयर करिए। स्मॉल माउथ रिमाइंड अस टू स्पीक लेस, एंड बिग स्टमक पावर ऑफ एडजस्टमेंट, समाने की शक्ति जीवन के अंदर। तो इसीलिए जितना जितना हम ये समाने की शक्ति करते जाएंगे अपने अंदर, घर की कोई बात होती है हमारी, बच्ची की, फैमिली की, वाइफ की, हम सारे मोहल्ले में कहते थोड़ी है, ऐसे ही समाने की शक्ति जो वो आपको यहाँ पर आठ शक्तियों में बताई जाएगी। मैं एक चीज के साथ आज का ये समाप्त करता हूँ, जस्ट एक छोटे दृष्टांत के साथ, कि एक प्रोफेसर साहब थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो उनकी मिसेज आई, चाय का एक कप रख गई, चीनी रख गई, चम्मच रख गई, कि भाई जितनी चीनी की जरूरत हो डाल देना। वो अपने काम में लग गई, उनकी डॉटर छोटी सी दो तीन साल की थी आई, बच्चे तो थोड़ा वो होते हैं, बच्चों ने बस देखा पापा तो अखबार पढ़ रहे हैं, चाय रखे है, चलो मैं इनका काम निपटा दूं। उसने चीनी की एक चम्मच भरी चाय में डाल दी, दूसरी चम्मच भरी चाय में डाल दी, तीसरी भरी चाय में डाल दी, चौथी भरी चाय में डाल दी। प्रोफेसर साहब का ध्यान सडनली गया, अरे अरे बेटे ये क्या कर रहे हो, ये तो चाय बहुत मीठी हो जाएगी। तो बच्ची ने कहा पापा ये कैसे मीठी होगी, जब तक आप इसे हिलाएंगे नहीं तब तक तो चीनी नीचे पड़ी रहेगी, मीठी नहीं होगी, आप चाहो तो देख लो। तो बच्ची का दिल रखने के लिए प्रोफेसर साहब ने बिना हिलाए चाय की चाय ऊपर से ली, पी, वाकई फीकी थी बिल्कुल। उसके बाद उसे हिलाया और फिर थोड़ी सी ली, बहुत मीठी हो गई थी। बस ये सभी हमारे जीवन से लगता दृष्टांत। अभी आप यहाँ पर आए हैं ना, दो दिन से तीन दिन से लेक्चर सुन रहे हैं, शीलू बहन का लेक्चर चीनी चम्मच नंबर एक, उषा बहन का लेक्चर चीनी चम्मच नंबर दो, अलग अलग लेक्चर चल रहे हैं, बहुत चीनी चम्मच पड़ी, और अभी स्वीटेस्ट चीनी की चम्मच पड़ने वाली है, डॉक्टर सतीश गुप्ता जी अभी लेक्चर लेंगे, अगर स्वीटेस्ट सबसे ज्यादा चीनी का मिठास तो उसमें होगा। तो लेकिन ये मीठा जीवन में आएगा कब, जब आप उसको हिलाएंगे, रिमाइंड करेंगे। इसीलिए पहले ही दिन आपको डायरी पेन दिया गया, आप उसे नोट कर रहे हैं। मैं देख रहा था कुछ तो लोग नोट कर रहे थे, कुछ बुद्धि में ही नोट कर रहे थे, वेरी नाइस। लेकिन अक्सर करके हमारी मेमोरी पावर ऐसी है, थोड़े तो रहेगी लेकिन 72 घंटे में पूरा एवोपरेट हो जाता है। तो नोट डाउन अगर होता है अच्छा है, तो इसे आप करते रहेंगे तो जीवन मिठास हो जाएगा, और आपको मुंह से भी वही निकलेगा, पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा जो हमारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के मुख से निकला था। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।